Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
भद्रं कर्णैभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वागुंसस्तानागर व्यासेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
परमात्मा की असीम कृपा से हम लोग विचार कर रहे हैं अथर्ववेदीय ब्राह्मण भागस्थ मांडुक्य उपनिषद के विषय में। यहां पर इस उपनिषद में 12 मंत्र है, आप सभी को अवगत हो चुका है। जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वही सभी का स्वरूप है। सभी का स्वरूप होने पर भी उसका सामान्यतया भान हो रहा है, विशेषतया भान नहीं हो रहा है। मेरा स्वरूप सत्य है, मैं हमेशा रहूं, और कोई मानता है कि नहीं? तो इसलिए भान तो है ही, मेरे सत्य और मैं चेतन हूं, ये भी सभी को ज्ञात है। जड़ हूं ऐसा तो भान नहीं होता है। और मेरा स्वरूप आनंद ये भी होता है सामान्य रूप से। यदि न होता तो फिर अपने से अत्यंत प्रेम क्यों होता है ना? सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है, क्यों होता है? क्या आपको ज्ञान है ना? ज्ञान है तब ना प्रेम हो रहा है जी। लेकिन विशेष रूप से भान नहीं हो रहा है। मेरा स्वरूप आनंद ही है, मेरे में किंचित मात्र भी दुख नहीं है, ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए विषय की स्प्रिया होती है, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, दोनों होता है। सामान्य रूप से भान और विशेष रूप से भान नहीं, दोनों बात चलती है। तो शास्त्र की प्रवृत्ति क्या है? शास्त्र की प्रवृत्ति ये है कि अपना भान विशेष रूप से न होना, इसमें जो प्रतिबंधक है उस प्रतिबंधक को दूर करता है शास्त्र। तो जिसको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शब्द से व्युपदेश किया गया, जिसको परोक्ष रूप से कहा गया, वो परोक्ष वास्तविक परोक्ष नहीं, ब्रह्म परोक्ष वस्तु नहीं, वो तुम्हारा कैसा है, स्वरूप है। इसी को यहां पर द्वितीय मंत्र में बताया, सर्वम ही एतद् ब्रह्म। सर्वम कहने से क्या हुआ, सारा जितने भी अर्थ है वो शब्द से भिन्न नहीं, क्योंकि साधक जहां तक पहुंचना चाहता है उसमें दो उपाधि जुड़ी है, सत्य ब्रह्म में दो उपाधि जुड़ी है, एक नाम है दूसरा रूप। कल आवलों को अवगत कराया कि सबसे आकर्षक कौन है, रूप है कि नाम है। हाँ रूप है, नाम इतना नहीं है। इसीलिए बुद्धि में आकर्षता रूप की न हो, इसलिए रूप से हटाना है। इसलिए क्या बोल दिया, जितने भी रूप है अर्थ ये अपने शब्द से भिन्न नहीं, जैसे घट अर्थ घट शब्द से भिन्न नहीं, वाचारंभणम विकार नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम कह दिया। कहने के लिए बोल दिया जाता है कि घड़ा है, शब्द से भिन्न नहीं। तो संसार में जितने भी अर्थ है वो अपने शब्द से भिन्न नहीं हुआ। और सारा शब्द का मूल क्या बताया, ओमकार। शास्त्र कह रहे हैं कि सारा शब्द का मूल ओमकार है। तो ओमकार से जो अभिन्न जगत है उसका स्वरूप क्या है, कि सारा जगत का नाम रूपात्मक जगत, शब्द भी है और अर्थ भी है, नाम भी है और रूप भी है, यही तो जगत है ना, और क्या जगत है। तो नाम रूपात्मक जगत है ये, इसका अधिष्ठान कौन है, बता दिया एतद् ब्रह्मा, ब्रह्म है ब्रह्म, जिसको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से कहा गया। वो ब्रह्म कहीं आकाश के ऊपर नहीं बैठा है, जैसे कुछ लोग क्या बोलते, सातमान के ऊपर है भाई ईश्वर, बोलते कि नहीं। आ कुछ लोग क्या बोलते, नहीं है जो है पांच जो है आसमान है ना, कोई सात आसमान बोलता है, कोई पांच आसमान है कि नहीं। तो ये जो ईसाई धर्म वाले क्या बोलते हैं, सातवें आसमान पर है जन्नत है ना, और कोई पांच आसमान के ऊपर बोलता है ना। तो किसी ने कहा कि भाई तुम्हारा जो वास्तविक ईश्वर है ना, ये सभी का ईश्वर हो सकता है। क्यों भाई, सातमान उस ऊपर के जाएंगे तब ना ईश्वर को प्राप्त करेंगे जी, जाएंगे तब ना प्राप्त करेंगे, उनका ईश्वर तो कभी आएगा नहीं यहाँ पर, है कि नहीं। उनका ईश्वर कभी आता नहीं ना धरती पर, कौन आता है, उनका दूत है, वो दूत दूत को भेजते हैं उनके ईश्वर। आज सभी लोग जो ऊपर जा नहीं सकते, सभी के पास सामर्थ्य है ही नहीं है ना, इसलिए हमारा ईश्वर क्या, हमारा ईश्वर तो कण कण में है, तो हमारा ईश्वर सभी का होगा कि नहीं होगा है, क्योंकि सर्वत्र है कि नहीं ईश्वर है ना। तो किसका ईश्वर सबका हुआ, हमारा ईश्वर हुआ कि उनका ईश्वर हुआ है। हाँ, इसलिए हमारा ईश्वर कैसा है, जहां पर तुम मान रहे हो अपने को मैं है ना, जिस अंतकरण रूपी घर में तुम हो है ना, जिस शरीर रूपी वृक्ष में तुम हो, उस शरीर रूपी वृक्ष में वो भी है, कौन, परमात्मा भी है, समझ में ना है। वो परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं है, ये तो जीव पना में जब तक है बुद्धि तब तक परमात्मा क्या है, भिन्न है ना। लेकिन अज्ञान चला गया तो उपाधि में दृष्टि चली गई तो क्या हो गया फिर, अयम आत्मा ब्रह्म, उपाधि से दृष्टि निकल गई, तो अपना स्वरूप क्या निकला, अयम आत्मा ब्रह्मा ये अविना करके बोल रहा, अविनय अभिनय जानते हैं ना, अभिनय भाई किसी अंदर में जो विचार है उस विचार को प्रकट करने के लिए हाथ में देखो क्रिया होती है कि नहीं, है ना। ये काम किसने किया, देखो तो मैंने किया बोलते हैं ना, तो अंगली जो इधर गई। अब महात्मा लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं, देखो हाथ ऐसा करते कि नहीं, इसको कहते हैं अभिनय, है ना। अंदर का विचार को प्रकट करने के लिए जो शरीर में क्रिया होती है उसी का नाम क्या है, अभिनय बोलते हैं। आगम इसको मुद्रा बोलते हैं, मुद्रा आगम शास्त्र इसको मुद्रा कहते हैं। इसी प्रकार यहां पर देखो श्रुति मुद्रा करके कह रही है आचार्य के मुख से, ये जो ब्रह्म है जो जिसको तुम परोक्ष कह रहे हो वो वास्तविक परोक्ष नहीं है, परोक्षता की भ्रांति हो गई है ना। वो ब्रह्म तो तुम्हारा स्वरूप है, अयम आत्मा ब्रह्मा ये जो आत्मा है देखो तो है ना, तो इधर हाथ क्यों चला जाता है, आत्मा सर्वत्र है कि नहीं, सर्वत्र होने पर भी आत्मा की अभिव्यक्ति कहां पर होती, हृदय में होती है, समझ में ना। इसलिए बुद्धि का केंद्र कौन है, हृदय है, ठीक है ना। ये मन का संचार हृदय से होता है, बुद्धि का संचार भी और प्राण का संचार भी कहां से, ये सब हृदय से है। इसलिए हृदय देश में आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए हाथ कहां पर चला जाता है, हृदय में चला जाता है। तो अयम आत्मा ब्रह्म कह दिया, लेकिन भाई उसको जानेंगे कैसे, वो दिखता तो नहीं है ब्रह्म, है ना। ब्रह्म कहां दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जानेंगे कैसे, एक उपाय बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, एक प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है, स्वयं आत्मा चतुष्पात, ये जो अपरोक्ष आत्मा है उसके कितने पैर है, हैं? चार पैर है, चार पैर। और अभी इस आत्मा के तो दो ही पैर नहीं है, दो भी पैर नहीं है, चार पैर कैसे हो गए, है ना, चार पैर कैसे हो गए। कहते हैं कि देखो यहां पर भगवान भाष्यकार बोले हैं, चतुष्पद कार्षपणवत न गौहु, जैसे गौ के चार पैर होते हैं ना, ऐसे इस आत्मा के चार पैर नहीं, ऐसा नहीं पैर ये। जैसे भी एक रुपया होता ना, एक रुपया है ना, उसमें किसकी कल्पना करते हैं, चार चौवन्नी, एक चौवन्नी, दो चौवन्नी, तीन चौवन्नी रख दिया, फिर चार हो गया, तो उसका नाम क्या हो गया, रुपया हो गया। क्यों ऐसा, ऐसी कल्पना क्यों करते हैं, अरे व्यवहार के लिए, व्यवहार के लिए, समझ में कि नहीं भाई। एक रुपए में चार ठो आम मिलता है, चार आम है ना, यदि आप विभाग नहीं करेंगे उसको चार चौवनी के रूप से, तो आपको चार आम लाना है तब भी एक रुपया लगेगा, और एक आम लाना है तो भी एक रुपया लगेगा ना, यदि विभाग ना करें तो, और विभाग कर दिया तो बस एक चौवनी से काम चल जाएगा। आजकल तक चौवनी लोग भाई, चौवनी क्या होता है लोगों को पता नहीं होगा ना, हाँ विदेश में बात छोड़ो, भारतीय लोगों को भी पता नहीं होगा चौवनी क्या है, है ना। पहले ये थी जो है ना, जो है सोलह आना बोलते हैं ना, सोलह आना, सोलह आना, पहले ये सब प्रचलित है। सोलह आना किस क्यों कहते थे पता है, ऐसे नहीं बोलते थे, ये पुरुष कैसा है, षोडश कला, ये पुरुष को क्या बोलते हैं, सोलह षोडश कला, षोडश कला, इसमें कितनी कलाएं हैं, सोलह कला है देखो। इसलिए पहले जो विद्वान लोगों ने कैसे नाम रखते थे, है ना, मुद्रा को भी क्या बोलते हैं, सोलह आना, है ना। तो व्यवहार में भी क्या होता था, तात्पर्य होता था, नाम से भी तात्पर्य होता है। बच्चे का नाम भी ऐसे रखते थे, है ना, कि उसका कोई ना कोई अर्थ निकले, जिस अर्थ से स्मरण हो सके, है कि नहीं। भगवान का नाम रख दिया कृष्णा, तो कृष्ण नाम बोलने से एक पुण्य भी हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तो अर्थ का स्मरण भी होगा कि नहीं होगा, बोलो, आजकल नाम क्या रखते हैं बच्चों का? कोई अर्थ है टिंकू पिंकू है? कोई अर्थ है इसका? हाँ, व्याकरण में ढूंढ लो, कोई अर्थ मिलेगा नहीं। व्याकरण लोग भी परेशान हो जाएंगे इसका क्या अर्थ होगा, है ना? तो ऐसे नाम पहले रखते थे कि जिसका कोई अर्थ हो और अर्थ का चिंतन हो सके नाम उच्चारण करने से। इसलिए यहां पर क्या बोल दिया, देखो चतुष्पाद मतलब चार पैर है, चार पैर है ना, जिससे एक रूपये के कितने चार चवन्नी होते हैं। इसमें अगर आत्मा के चार पैर हो गया तो पाथ, पाथ करते क्या है पैर, है ना? तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इससे इसका एक पाद हो गया कौन, विश्व। आगे बताएंगे, जागृत में जो अभिमान करता है चेतन उसका नाम क्या होगा, विश्व हो गया, एक पैर हो गया। ये इसे व्यवहार हो रहा है कि नहीं जागृत में, है? और वही चेतन चला गया सपनों में तो उसका नाम अलग हो गया भैया, आगे चला गया ना फिर, है ना? पीछे का पैर छोड़ दिया, आगे का पैर बढ़ाया। तो सपना अवस्था में चला गया तो उसका नाम क्या हो गया, तेजस हो गया, देखो, है ना? आज सपनों में गया, सपनों में बहुत सारे भोग किया, चिंतन किया, थक गया बेचारा। सपनों में थकावट होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। अरे सपनों में कितना भी रसगुल्ला खाओ नहीं थकेंगे, बोलो? मन में कोई भी क्रिया हो थकावट तो जरूर है, हो गया ना? तो सपनों में थक जाता है तब कहां चला गया, सुसुप्ति में चला गया, देखो, है ना? तीसरा पैर में चला गया, है ना? दो पैर छोड़ दिया, तीसरे पैर के द्वारा कहां चला गया, सुसुप्ति में चला गया। तो उसका नाम क्या पड़ गया, प्राज्ञ हो गया, ठीक है ना भी? और चौथा क्या है, ये तीनों के तीनों कहां पर कल्पित है? अरे भी उपाधि को छोड़ दिया, अरे किसी आदमी का नाम देवदत्त मान लीजिए, देवदत्त है, है ना? तो भोजन बनाता है तो उसका नाम क्या हो गया, पाचक। संस्कृत में क्या बोलेंगे, भंडारी, हिंदी में जो बोलते हैं उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, पाचक, पाचक बोलेंगे। हाँ, वो पढ़ा लिखा है, स्टेज में आ गया, हाँ तो बोलने लगा भाई, हाँ, उस समय उसको पाचक बोलोगे, है ना? क्या बोलेंगे, वाचक बोलेंगे, वाचक बोलेंगे, समझ में कि नहीं? और जिस समय कुछ नहीं करता घर में चला गया तो हाँ वो क्या हो गया, देवदत्त हो गया कि नहीं, शुद्ध, है ना? तो उपाधि बदलने से भी ये स्वरूप नहीं बदल जाता है। एक देवदत्त में ये पाचकत्व भी क्या है, कल्पित है, और तुम्हारा वाचकत्व भी कल्पित है। इसी प्रकार से ये तीनों के तीनों कैसे हैं, कल्पित है। विश्व जो प्रथम पाद है, दूसरा तेजस है, और तीसरा प्राज्ञ, ये सारे के सारे तीनों ये शुद्ध ब्रह्म तुरीय में कल्पित है, हो गया ना? तो इसकी अपेक्षा से विश्व तेजस प्राज्ञ ये हो गया पाद। पाद का अर्थ यहां पर साधन, पाद का अर्थ क्या है, साधन, साधन समझ लो, है ना? जानने की एक प्रक्रिया है, जैसे गणित है कि नहीं गणित, अरे कभी गणित के सूत्रों को जब तक नहीं समझते हैं, जब तक हल नहीं निकलता है, निर्णय नहीं निकलता है, है ना? तब तो भी मानना पड़ता है कि नहीं, ना माने तो आपको गणित कैसे समझ में आएगा? किसी को बोल जाएगी तुम्हारे पास पांच कलम है, दो दे दिया तो कितना रहा, तीन रहा, आप बोलोगे हमारे पास तो एको कलम नहीं है, तो उनको गणित समझ में आएगा? जब तक हल नहीं निकलता, हल मतलब निर्णय, निर्णय जब तक नहीं होता है तब तक आपको मानना ही पड़ेगा कि मेरे पास पांच टो कलम है, समझ में नहीं? इसी प्रकार जो तुरीय चैतन्य शुद्ध ब्रह्म अपना स्वरूप, हाँ, यहां तक जब तक नहीं पहुंचते हैं, जैसे आप छत के ऊपर चढ़ते हैं कि नहीं, छत के ऊपर चढ़ेंगे तो कैसे चढ़ेंगे, सीढ़ी के द्वारा चढ़ेंगे ना, है ना? आज छत के ऊपर चल लिया तो सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं है, हाँ उतरना हो तो सीढ़ी की जरूरत है, उतरना है तो सीढ़ी की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर उतरना नहीं है ना? एक बार सूर्य चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया तो जगत में उतरना नहीं पड़ता है। हो गया कि नहीं? जैसे पुण्य के बल से स्वर्ग रूपी छत में जाएंगे तो वहां तो उतरना पड़ेगा, है ना? लेकिन यहाँ पर जो स्वरूप अपना है, जहां तक पहुंचाना चाहता है शास्त्र, वहां पर एक बार पहुंच गया तो ये जो तीनों पाद है, जो सीढ़ी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये प्रक्रिया बता दिया कि अयम आत्मा चतुष्पाद। तो पूर्व जन्म में अनेक जन्म से हमारी जो वासना है ना, पूर्व पूर्व जन्म में संपादित जो कर्म है, उस कर्म के कारण, मूल अज्ञान के कारण हमारा अभ्यास होता जा रहा है। किसमें? शरीर में। शरीर को मैं मान रहे हैं, स्थूल को मैं मान रहा है, सूक्ष्म को मैं मान रहा है, कारण को मैं मान रहा है, इसलिए इनका क्या नहीं हो पा रहा है? विवेक नहीं हो पा रहा है। समझ में ना? किसके कारण? पूर्व जन्म में संपादित अनादिकाल से जो पाप पुण्य है, इसके कारण जो है वस्तु की प्राप्ति हो रही है ना? तो पूर्व जन्म है कि नहीं? कल बताए ना, पूर्व जन्म तो है ही। किसी वैज्ञानिक ने कहा, भाई वैज्ञानिक ने, यूरोप का कोई वैज्ञानिक था, तो उन्होंने एक लेख लिखा था कि पहले हम नहीं मानते थे पूर्व जन्म को, लेकिन ऐसी एक घटना हो गई अपने जीवन में कि हमको भी मानना पड़ा है। क्या घटना हुई? तो उन्होंने लिखा था कि अपने घर में एक चित्र था पति पत्नी का, पति पत्नी का चित्र था, तो उनका पुत्र था। पुत्र आकर एक दिन बोल दिया, पिताजी से पूछा कि चित्र किसका है? बोला कि मेरा है और ये तेरी माँ का है ना, ये हम दोनों का चित्र है। तो पुत्र ने पूछा कि ये चित्र जब का है, उस समय मैं कहाँ था? सुन भैया, पुत्र ने क्या पूछा? ये जो दोनों का है चित्र है, माता के पिता के है, लेकिन उस समय मैं कहाँ था? वो चित्र विवाह का था। अरे भी हम दोनों का जो विवाह था, विवाह हुआ, उसी का ही फोटो है। तो पुत्र ने बोल दिया कि उस समय मैं कहाँ था, है ना? देखो, उसने, वो पुत्र ने शास्त्र नहीं पढ़ा है कि पूर्व जन्म है, है ना, कि परलोक है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं उनको, किसी ने पढ़ाया नहीं है, है ना? लेकिन अपने अस्तित्व को मानता है। देखो, अपना अस्तित्व सर्वदा है, पहले भी अस्तित्व अपना था, आगे भी रहेगा, पुत्र को कैसे ज्ञान हुआ बताओ, है ना? वो पुत्र ने तो शास्त्र नहीं पढ़ा है, उनके अस्तित्व का ज्ञान कैसे हुआ? पूर्व जन्म में भी आत्मा का अस्तित्व है, वो ज्ञान कैसे हुआ, है ना? इसे ये लगता है कि आत्मा हमेशा है, आत्मा का अस्तित्व का अपलाप तुम तक कर ही नहीं सकते, कितनी भी तुम युक्ति लगाओ, कितनी भी बुद्धि लगाओ, आत्मा को तो मानना पड़ेगा। लेकिन कठिनाई कहां पर है कि अपना स्वरूप का पहचान, अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा, मैं बोलने से शरीर भी आ जा रहा है, समझ में ना? अध्यास के कारण, यही अध्यास को निवृत्त करता है, क्या है? शास्त्र। मैं का तो ज्ञान है, लेकिन शुद्ध मैं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, शुद्ध मैं का ज्ञान कराता है। अशुद्ध मैं के ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, सामान्य मैं के ज्ञान से नहीं। शरीर को जो मैं मान रहे हैं, इसके ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। तो एक प्रक्रिया बता दिया, ये तीन क्या है? साधन, विश्व, तेजस और प्राज्ञ। इसके द्वारा जो चौथा पाद है तुरीय चेतन, वो साधन नहीं है, वो साध्य है। चार पार हो गए ना, कितना पार पैर हो गए? चार। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये साधन होने से इसको पाद बोल दिया, पद्यते प्राप्यते अननयति पादः, ये अर्थ करना है। और तुरीय चेतन अपना स्वरूप है, उसको क्या बोलेंगे, पद्यते इति पादः, जिसको प्राप्त किया जाता है, जहां तक पहुंचा जाता है उसको कहेंगे पादः। तो ये चार पाद जो कह दिया, चार पाद, तो ये किस अभिप्राय से कहा, इसका आगे विश्लेषण करते हैं तृतीय मंत्र से। तो पहला है विश्व, व्यक्ति में विश्व और समष्टि में विश्वानर कहिए अथवा विराट कहिए। जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख स्थूलभूग विश्वानर प्रथम पाद। पहला पाद का नाम क्या है, विश्वानर समष्टि में, है ना। तो विश्वानर नाम क्यों हो गया, क्योंकि देखो ये अहमतया भान तादात्म ये पूरे में हो रहा है, हम तो एक ही में कर रहे हैं शरीर में, है ना। देखो जिस शरीर को हम अपना मान रहे हैं, जिस शरीर में हम तादात्म अभिमान कर रहे हैं, है ना, उसी शरीर में भी बहुत सारे जीव जंतु छोटे मोटे कीड़े अंदर है कि नहीं है, है ना। तो वो लोग भी इसे अभिमान करते ही नहीं करते हैं, बोलो। जिस शरीर को हम अपना मानते हैं, इसी को मानने वाले बहुत सारे हैं कि नहीं अंदर, है, समझ में कि नहीं। तो इसी शरीर के अंतर्गत उनको अभिमान हो रहा है ना, इसी उपाधि के अंतर्गत उनका अभिमान है। इसी प्रकार से ये पूरा समष्टि जो हो गया, ये भी शरीर हो गया, बात पढ़ में है कि नहीं भाई। छोटे मोटे कीड़े जो अभिमान करते हैं, है ना, इसका मूल आधार कौन हो गया, समष्टि कौन हो गया, यही तो हो गया ना एक शरीर में, पहले समझ लो, है ना। इसी प्रकार एक व्यक्ति हो गया ये, है ना, इस प्रकार अनेक शरीर कहां पर अंतर्गत होगा, वह समष्टि में, इसको बुद्धि में बैठा कर रखो, हो गया ना। कीड़े जैसे अभिमान करने होने से कीड़े हो गए व्यष्टि, हो गया ना। हम पूरे में अभिमान करते हैं, इसलिए हम क्या हो गए, समष्टि। इसी प्रकार से समझ लो, इसमें अनेक शरीर है, अनेक व्यष्टि है, इसका भी क्या होगा आधार, समष्टि हो जाएगा, है ना। तो उसी समष्टि शरीर में जो अभिमान करता है उसका नाम क्या हो गया, बेसन। बस अंतर इतना है, लेकिन हमारे बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाती है, सीमित अहमता के कारण, परिचिन्न अहमता के कारण हमारा तादात्म्य सर्वत्र नहीं हो पाता, एक में,